بسم اللہ الرحمن الرحیم حسب الناس یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون صلوات بھیجیے محمد آل محمد عیدان محترم آپ سے درخواست کروں گا ابھی 6 ستمبر گزر رہی ہے 12 بجے تک 6 ستمبر باقی ہے آپ سے درخواست کروں گا اپنے ان جوانوں کے لیے جن جوانوں نے 1947 سے لے کر آج تک سرحدوں کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کی دہشت گردوں سے مقابلے کے لیے اپنی جانیں قربان کی حسین جوان پیش کی آپ سے زیادہ کون اس کی قدر و قیمت جان سکتا ہے کیسے کیسے قیمتی افراد آپ نے بھی قربان کی ٹھیک ہے نا اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم پر کس کس نے کہاں کہاں زیادتی کی ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے ہم سب جانتے ہیں لیکن کیونکہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں نا اہل بیت کے ماننے والے ہیں لہٰذا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دکھ کیا ہوتا ہے یہ دکھ کیسا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ہزاروں لاشیں اٹھائی ہیں اور ایک سبق سیکھا ہے کہ اپنے ساتھ جتنی زیادتی ہو جائے کبھی اپنی مٹی کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتے کبھی اپنی زمین کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتے یہ کسی کو سمجھ میں آئے یا نہیں آئے ان کو سمجھ میں آئے گا بھی نہیں 1400 سال سے سمجھ میں نہیں آیا آج کیا سمجھ میں آئے گا ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وفادار کون ہوتا ہے اور بے وفا کون ہوتا ہے ان کو اب بھی وہی عزیز ہیں وہی سارے کہ جو ابھی بھی مودی کے ساتھ کھڑے ہیں کس کے ساتھ کھڑے ہیں نام مسلمان ہے اور مودی کے ساتھ کھڑے ہیں اب بھی ان کو وہی عزیز ہیں وہی پیارے ہیں ان کو ابھی سمجھ میں نہیں آیا کہ اپنے مفادات کو قربان کر کے مسلمانوں کی حمایت کرنے والا ہے کون مسلمانوں کا ساتھ دینا لہٰذا ان تمام باتوں کے باوجود یہ شہید میرے شہید ہیں یہ جوان میرے جوان ہیں وہ فوجی جوان ہوں وہ رینجرز کے جوان ہوں وہ پولیس کے جوان ہوں عام آدمیوں ہمارے بیچارے بیوروکریٹس ہمارے ڈاکٹر ہمارے علماء ہمارے خطیب ہمارے ذاکر ہمارے عام آدمی جو بھی شہید کیے گئے یہ سب ہمارے ہیں میں نے عرض کیا نا کہ مجھے حکومتوں سے کوئی تعلق نہیں لیکن یہ جوان میرے مجھے تو دکھ ہے نا دیکھیے یہ آگے آپ کی حفاظت کے لیے کون کھڑا ہے یہی کھڑے ہیں نا بیچارے رینجرز والے کھڑے ہیں پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں اسکاؤٹ کے بچے کھڑے ہوئے ہیں یہی تو کھڑے ہوئے ہیں فرنٹ لائن پہ تو یہ ہیں اس کے باوجود بھی دیکھیے دشمن تو چھپا ہوا ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے وہ تو چھپا ہوا ہے پتہ نہیں کہاں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے بیٹھا رہے گا اچانک نکل کے آئے گا تو بھائی بات یہ کہ اتنا بڑا پاکستان اتنی بڑی زمینیں آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے ملکوں میں جہاں ہم سے زیادہ وسائل ہیں وہاں بھی وہ نہیں بچ پاتے دہشت گرد کیونکہ چھپا ہوا ہے نا کمین گاہ میں نکل کے آتا ہے حرکت کر کے چلا جاتا ہے تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ سب اپنی جگہ حکومتوں کی حمایت مخالفتیں جوان میرے ہیں جوان آپ کے میری بچے فوج میں جاتے ہیں میری بچے رینجر میں جاتے ہیں میری بچے اداروں میں جاتے ہیں پولیس میں جاتے ہیں یہ جو بھی اب تک جانیں قربان کر چکے ہیں اس ملک کے دفاع کی خاطر آپ کی حفاظت کے خاطر ان تمام شہدا کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا اب ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد پر آج پتہ ہے کیا میں سمجھ رہا تھا کہ میں تھکا ہوں آپ تو مجھ سے بھی زیادہ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں بھائی بلند آواز سے بات بھیجیے میں راستے میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوا رہا تھا کہ اتنا تھکا ہوا ہوں رات بھر کا گزشتہ جاگا ہوں ابھی تک سویا نہیں ہوں مجلس کیسے پڑھوں گا آپ کو دیکھ کے تو مجھے تو کہ یہیں پہ میں سو جاؤں تو اچھا ہے تو خدا کے بندو یا جزاک اللہ اچھا اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ آج آپ پھیل کر بیٹھے ہوئے تھوڑا سا سمٹ آئیے بہت اچھا ماحول بن جائے گا شانے سے چھانا جڑی تھوڑا تھوڑا سا آگے بڑھائیے ایک صلوات بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے محمد آل محمد پر جزاک اللہ آ جائیے تھوڑا سا آگے شرمائیے مت پیش قدمی میں کیسا شرمانا بھائی ہم پیچھے رہنے والوں میں تھوڑی ہیں بھائی ہم پیش قدمی کرنے والوں میں اس میں مت ڈرا کیجیے ٹھیک ہے اب آئیے بات ہی 6 ستمبر کی تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ 6 ستمبر کی بات آئے اور نشان حیدر کا ذکر نہ کروں وہ خدا کے بندوں مجھے تو 6 ستمبر یاد ہی اس لیے رہتی ہے کہ پوری دنیا میں گونج میرے مولا کے نشان کی جو ہے میرے ہر جوان کی یہ حسرت ہوتی ہے کہ وہ ایسا کارنامہ انجام دے کر شہید ہو کہ اس کے سینے پہ نشان حیدر سجا دیا جائے اور کتنی عظمت ہے اس نشان حیدر کی کہ زندہ کو دیا ہی نہیں جاتا اس کے لیے مرنا بڑا ضروری ہے کیوں جانتا ہے کہ نشان حیدر کی معراج ہے کہ اپنی جان سے گزر جاؤ اب کتنے ہی نعرے لگاتے رہو کہ یہ نشان رکھ دو وہ نشان رکھ دو فلاں نشان رکھ دو اور کبھی غلطی بھی نہ کرنا जैसे निशान रखोगे ना वैसे ही असर फौज में आ जाएगा। समझ गए? हर निशान की अपनी एक खासियत है। जब अच्छा अल्लाह अच्छा अजीब है, निशान भी हैदर रखा गया भाई, निशाने अली रख दिया जाता, निशाने मुर्तजा रख दिया जाता, इतने मौला के अल्काब है, निशाने भूतरा होगा, निशाने हैदर। पता नहीं मैंने बताया नहीं बताया, अगर बता भी दिया कोई बात नहीं, एक जुमला तकरार कर देने में हरज थोड़ी। जानते हैं ना कि निशाने हैदर क्यों? अरे भाई हैदर मसला ये है कि अली ने सारी जंगों में और जंगों के अलावा भी कहीं भी तारुफ कराया, कहा अली इब्नु अबी तालिब, एक ही जंग है जंगे खैबर, जिसमें अली ने कहा सम्मतनी उम्मी हैदर, मैं वो हूं जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा है, हैदर। तो कितना इल्म था हैदर की माँ के पास, जानती थी कि किसी को किसी की माँ ने बताया है कि तू सबसे बड़ा फाते है बस हैदर नाम के। जब कोई मैदान में हैदर नाम का उसके मुकाबले पर ना जाना, तो अली ने भी जानते थे कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा क्यों है, खैबर की फतह के लिए। और आप जानते हैं कि ये खैबर का जख्म हैदर ने कितना गहरा लगाया है, आज तक ये यहूदी भूल नहीं पाए। आपको मालूम ही नहीं, मक्के मदीने से ज्यादा अब भी जब ये एहतजाज करते अमेरिका वगैरह में, तो खैबर का नाम लेके कि हम खैबर वापस लेके रहेंगे, यानी अली का लगाया हुआ जख्म इतना गहरा है कि यहूदी आज तक बिलबिला रहे हैं। लगता है औरंगी वाले बहुत याद कर रहे हैं मुझे, एकदम हिचकी आनी शुरू हो गई। सलावत दे दी,
वाह
क्या बात है,
आप हैं मिंबर पर और मलाइक हैं सरे फर्श, ऐसा जिक्र शबीर ने बख्शा है ये रुतबा कैसा,
वाह वाह,
इश्क़े शाम बखुशी अपना बहाते हैं लहू, लोग हैरान हैं अल्लाह ये जज्बा कैसा, नारा हैदरी
यार। अब ये नहीं ने ऐसे शेर पढ़ दिया अचानक कि मुझे अपना शेर खुद ही याद आ गया। रश्क हो खुद को ना क्यों बालाए मिंबर देखकर, हर जगह गुरूर तकब्बुर नाजायज है, पसंद नहीं है अल्लाह को। और याद रखिए कभी भी इसका शिकार मत हो जाइएगा, क्यों? इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, मुतकब्बिर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, जिसने तकब्बुर किया तबाह हो गया दुनिया भी आखिरत भी सब बर्बाद। कभी अपने आप को फलने खाना समझना, एक लम्हा एक दिन एक रात नहीं लगती आसमान से नीचे आते हुए एयर कंडीशन से खोली में जाते हुए। लड़ रहे हैं एयर कंडीशन दे दो, फ्रिज दे दो, क्यों? कितनों को दिया तूने अपने ज़माने में, कितनों को दिया, क्या हाल किया तूने लोगों का? और तूने नहीं, तेरे जैसे पता नहीं कितने और भी अम्मा अब्बा बेटे बेटियाँ सारे बंदे ना सारे रो रहे हैं। अच्छा आप क्या समझ रहे हैं लोग हुकूमत के हामी है? ना बाबा, लोग भी बहुत होशियार हो गए, ये सारे लोगों को टोपियाँ पहनाते थे ना, लोग इनको टोपियाँ पहना रहे हैं, खुद छोड़ के आ रहे हैं जेल, चलो भाई जिंदाबाद, वो समझ रहा जाने नहीं, वहीं छोड़ के अंदर फेंक के वापस आ जाते हैं। लोग इतने होशियार हो गए, हुकूमत के हामी नहीं है, लेकिन लोगों को पता है भाई इनके पीछे नहीं जाना, इन्होंने पहले क्या किया हमारे साथ, समझ में आ रही है ना बात हमारी? तो ऐसा है सिलसिला सारा का सारा, के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे, जितने भी हैं सब के सब एक ही थाली। तो अब सुनिए, हर जगह गुरूर तकब्बुर हराम, हर एक के लिए हराम, सिर्फ अल्लाह है मुतकब्बिर। अंबिया के लिए भी जायज़ नहीं है भाई, रसूल भी इनके सारी। और मेरा रसूल तो ऐसी इबादत करता था कि परवरदिगारे आलम को फरमाना पड़ा है हबीब कम थोड़ा सा कम। और अली की इबादत कैसी है, रेश आंसुओं से पर है, समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन मेरे पास एक दलील है, वो दलील ही तो देना चाह रहा हूँ ताकि आप भी खुश हो जाएं। मेरे भाई ने तो चलो मोहब्बत में पढ़ दिया शेर, लेकिन मैं अपना शेर सुना। रश्क हो खुद को ना क्यों, बालाए मिंबर देख कर महवे हैरत हूँ, कमाले मधे हैदर देख कर। अगर ये थोड़ा सा कुछ मनसब है ना, इज्जत है, किस लिए है? मुझसे बड़े बुजुर्ग बेहतर लोग आलिम लोग नीचे बैठे हैं। काश इतना मिंबर पे बैठने वाला सोच ले कि मौला ने तुझे इज्जत कितनी दी है, इसका ही ख्याल कर ले। क्यों लोगों को बहकाता है, क्यों लोगों के आकिबत और अपनी आकिबत ख़राब करने के पीछे पड़ा हुआ है? ये मेरा मकाम थोड़ी था, मौला ने इज्जत दी। जब मौला ने इज्जत दी है तो उसको संभाल के भी तो रखो, इतना ज़र्फ़ भी तो होना चाहिए। कम ज़र्फ़ तो ना बनो, वरना वो छीनना भी जानते हैं, और जिनसे छीनते हैं उनको हमने देखा, इन गुनाहगार आँखों से देखा कि उनके साथ हुआ क्या। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, ठीक है। आज भी यहूदियों को यही है, आज तड़प रहे हैं आज तक, अब भी नारे लगाते हैं खैबर लेंगे वापस, खैबर लेंगे, हमारी आखिरी मंजिल खैबर है। इन्हें पता ही नहीं, जैसे तुम वारिस बन के इंतजार कर रहे हो वापस लेंगे, ऐसे ही हैदर के वारिस भी बैठे हैं। बैठे हैं या नहीं बैठे नहीं पता, जिनको बता देता हूं उनको, जब ये जंगवी थी 2005 में हिजबुल्लाह और इसराइल की हसन नसरुल्ला की आवाज गूंजी थी, रेडियाई लहरों पे भी, सीमियाई लहरों पे भी, यानी रेडियो पे भी, दुनिया भर के टेलीविजन पर भी उसने ललकारा था, तो मैं मालूम नहीं मैं कौन हूं, अनबनुल मुस्तफा, अनबनुल मुर्तजा, अनबनुल फातिमा जहरा, अनबनुल हसन, अनबनुल हुसैन, मैं मुस्तफा का बेटा हूं, मैं मुर्तजा का बेटा हूं, मैं फातिमा जहरा का बेटा हूं, मैं हसन हुसैन का बेटा हूं। यहूदियों तुम्हें खैबर याद दिला दूंगा। समझ में आई बात, याद दिला दिया ना, चले थे खैबर लेने, बैठे हैं, ये खैबर बचाएंगे, ये खायनुल हरम है, ये बचाएंगे, ये तो अभी लिख के दे चुके, आ जाओ। कहते हैं कि साहब इन्हीं ने बुलाया है, अमेरिकी फौजें उतरी हैं इनको बचाने के लिए। वहां आपको पता ना अमेरिकी फौजियों के आड़ में कौन उतरे हैं? इसराइली। अड्डे भी दे दिए गए, किसी को पता है या नहीं पता, खुल के बोल रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ने इतनी जुर्रत दी है मुझे, मेरे मौला ने इतनी जुर्रत दी है, कोई रोक नहीं सकता मुझे सच बोलने से, या जबान काट दो या मार दो, ये दो ही रास्ते हैं और कोई तीसरा रास्ता नहीं मुझे ये बातें कहने से रोकने का। समझ में आ रही है बात? दे दिया इन्हीं ने सब। क्या कि जी वो किंग सलमान ने इजाजत दी उतरने की, इसकी हिम्मत है इजाजत देने की उन्हें? उन्हीं ने गर्दन पे पैर रख के लिखवाया, लिख लिख, गर्दन पे पैर रख के लिखवाया कि लिख, हम आ रहे हैं यहाँ पे, हाँ आ रहे हैं, दूर रहेंगे, रियाज में रहेंगे, जद्दा में रहेंगे। हदफ क्या है? तीन हदफ हैं, मक्का, मदीना, खैबर। और इत्मीनान रखो, ये अल्लाह का वादा है, ये मौला का वादा है, यही हसरतें लिए इनके लश्कर गर्क हो जाएंगे, डूब जाएंगे, कोई खलीज फारस में गर्क होगा, कोई खलीज उम्मान में गर्क होगा, जो जमीन पर पहुंच गया वादिये बैदा में धस कर ऐलान करेगा कि तुम्हारे नजिस कदम न मदीने पहुंच सकते हैं, न मक्का पहुंच सकते हैं, नहीं खैबर तुम्हें मिलने वाला। अली ने इसलिए खैबर फतह नहीं किया था कि किसी दिन वापस ले लो, ना अली ऐसी जंग करता है, ना अली का कोई बेटा ऐसी जंग करता है जिसने खैबर फतह किया, कायम कयामत तक खैबर उसके नाम, जिसने करबला फतह की, कयामत तक करबला उसके नाम। मिक्स हो गए आपके सारे नारे, मजा नहीं आया। आराम से, आराम से, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है, पता है क्यों? इससे पता चलता है कि नारे लगाने वाले मैं अपने साथ नहीं लाया, है ना, इधर से आता ना, मुझे बड़ी खुशी होती, वरना माशाल्लाह। یا ہے نا، اس سے بڑا خوشی بھی ہوتی ہے مجھے کہ پتہ چل جاتا ہے میں نہیں لایا، میرے ساتھ آتے تو سیٹنگ سے لگا رہے ہوتے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، لیکن پھر بھی دل چاہتا ہے نا کہ بھائی جب لگاؤ تو ایک کی سن لو پھر دوسرا لگاؤ دوسرے کی سنتی، سب ایک ماشاء اللہ جوش میں ہوتے، خدا آپ کے اس جوش و جذبے کو ہمیشہ سلامت رکھے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے، سمجھ میں آئی بات، ایسے ہے ایسے مل جائے گا سب کو نشانے حیدر، یوں ہی مل جائے گا نشانے حیدر۔ ہاں کبھی کبھی ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ کسی کو ملنا چاہیے تھا نہیں ملا، ہمارا جوان، ہمارا نہیں پاک فوج کا جوان، پاکستان کا جوان، ساری قوم کا جوان، خبردار ان سرحد کے محافظوں کو مکتب اور فرقوں میں تقسیم نہ کرنا، احمق ہیں بے وقوف ہیں وہ لوگ جو ملت کے جوانوں کو، کہہ رہا میرا اہل حدیث مجاہد تھا، میرا شیعہ مجاہد تھا، وہ کہتا میرے فرقے سے تعلق تھا، بریلوی تھا، دیوبندی تھا، یہ سرحدوں کے محافظ، بس سرحدوں کے محافظ ہوتے ہیں، ان کا دین ایمان یہ ہوتا ہے کہ اسلامی سرحدوں کا دفاع کیا جائے، نام کچھ بھی ہو یہ دیکھو کہ اپنے ملک اور قوم پہ قربان ہو رہا ہے یا نہیں، اگر ملک اور قوم پہ قربان ہو رہا ہے، کسی مکتب کا ہو، کسی شہر کا ہو، کسی زبان کا ہو، یہ سب تمہارے بیٹے ہیں، یا خبردار۔ یہ آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، جو شہید ہو گیا پہلے نام دیکھ رہے، نام کیا ہے، وہ اللہ کے بندو، وہ اپنے ملک کے لیے جان دے رہا ہے، وہ اپنی قوم کے لیے جان دے رہا، تم اس کا فرقہ ڈھونڈنے کے چکر میں لگے ہو، 65 تک ایسا تھا نہیں تھا نا، اس سے کسی کو غرض نہیں تھی، تو بعد میں وہ جو ملون گیا نا، جو ہوا میں بکھر گیا، اس کے دور میں یہ شروع ہوا۔ اب میں اس کو کہ جب تک عیسال عذاب نہ پہنچاؤں میری تسلی ہوتی نہیں بھائی، اسی کا کاٹا وہ آج تک بھگت رہے ہیں، ساری ہماری فورسز بھی بیچاری بھگت رہی ہیں، عوام بھی بھگت رہے ہیں، سب اسی کا کیا طرح بھگت رہے ہیں، اور اب کہتے بھی ہیں، فورسز بھی کہتے ہیں کہ وہی تھا ضیاء الحق، ہمیں کہاں پھنسا کے چلا گیا، کس دلدل میں پھینک کے چلا گیا، اب تو کہتے ہو نا، ہم کہتے تھے ہمیں کوڑے مارے، ہم نے کہا ہمیں جیل میں ڈالا، تو یہ بھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ نہ سمجھنا ضیاء الحق نہیں ہے تو اب بول رہا ہوں، گواہ ہیں لوگ یہاں کہ خدا کی قسم اس کے سامنے اس کے زمانے میں یہی کہے جو آج کہہ رہے ہیں، اور جیل کی تاریخ کوٹھیوں میں بھی رہے، کوڑے بھی کھائے، کوئی فخر کی بات نہیں کر رہا، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ نہ سمجھنا کہ جرنلوں کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اس وقت بھی کہا جب وہ بدترین عامل تخت پہ بیٹھا تھا، آج بھی اگر کوئی ایسی حرکتیں کرے گا آج بھی کہہ کر بتائیں گے کہ ہم حسینی ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے، یہی تو ہماری آزمائش ہے عزاداروں، اب آگے اب میں کیا کروں، 6 ستمبر کا حق ادا کرنا تھا، اپنے جوانوں کو اگر خراج عقیدت پیش نہ کرتا ہوں، نشان حیدر لینے والوں کو، وہ کیپٹن سرور سے لے کر میجر طفیل سے لے کر راجہ عزیز بھٹی سے لے کر لالچ جان تک آ جاؤ، گلگت کا ہو یا کراچی کا ہو، آپ کے کراچی کا بہت خوبصورت ایک شہید آپ نے دیا، جانتے ہیں نا، حالانکہ اس کے نام پہ بڑا بڑا گھر کر دیا ایک بلڈنگ کا، یہ میجر ضیاء الدین عباسی ہاسپٹل جو ہے نا، یہ کس کے نام پر ہے، بزرگ جانتے ہیں، بڑے جانتے ہیں، میجر ضیاء الدین عباسی، اتنا حسین، میں جب چھوٹا تھا نا 6 ستمبر کا اخبار آتا تھا، سب سے پہلے اس کی تصویر ڈھونڈتا تھا، چھوٹا سا تھا، وہ میرے جذبات تھے کہ میجر ضیاء الدین عباسی کی تصویر کس کس طرح ہے، ہر ایک تمام شہدا کی تصویریں آتی تھیں نا 65 کے، میں دیکھتا تھا، مجھے اتنی محبت، تو کراچی کا ہو یا وہ لالچ جان گلگت کا ہو، ارے کہیں کا بھی ہو، تمہارے لیے جان دے رہے نا، تمہاری سرحدوں کے دفاع کے تمہارے لیے، ہمارے بیٹے ہیں سب کے سب، ہمارے بیٹے، کیپٹن یاسر کا بتاؤں، کہ اس کے والد والدہ دونوں سے میں کئی بار ملا، پروردگار ان لوگوں کو سلامت رکھے، ان کے حوصلوں کو سلامت رکھے، یہ بات جو بتانے جا رہا ہوں نا، اس شہید کے باپ نے مجھے خود بتائی کہ جب میں اپنے باپ بیٹے کی ڈیڈ باڈی لینے گیا، کمانڈر نے مجھے سلوٹ کیا، میں حیران ہوا مجھے سلوٹ کیوں کرا، سلوٹ کرنے کے بعد چادر ہٹائی میرے بیٹے کے لاشے سے، کہا ہمیشہ فخر کرنا، تیرے بیٹے نے ساری گولیاں سینے میں کھائی ہیں، کوئی پیٹھ پہ نہیں کھائی ہے، ये थे हमारे जवान, ये हैं हमारे जवान फौज के, का क़यामत तक फ़ख्र करना, तुम्हारी नस्लें फ़ख्र करें, तेरे बेटे ने जितनी भी गोलियां खाई हैं, सीन यानी लौटता रहा दहशत गर्दों से सीना सामने किए, कोई बाजू पे नहीं, कोई पीठ पे नहीं, कोई कमर पे नहीं, 8 या 9 गोलियां उसको लगी थी, सब के सब सीने पे खाई। तो ये है वो कि जो निशाने हैदर के लिए मर मिटना जानते हैं, जानते हैं कि हैदर से निस्बत मिलना इतना आसान नहीं है। जब मर मिटोगे तो फिर हैदर जिंदा करेगा। अब ये निशाने हैदर आज तक जिंदा रखे हुए कि नहीं जिंदा रखे हुए, पूरे खानदान फख्र करते हैं। हाँ, कुछ नंगे खानदान भी होते हैं, मैं क्या करूं, सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, है ना, समझ गए ना, हर खानदान में कुछ नंगे खानदान भी होते हैं, डुबो देते हैं नाम अपने बड़ों का। उन्होंने निशाने हैदर लिए, ये वहाँ चला गया चंद डॉलरों के लिए, बनी बनाई इज्जत, अच्छी वाली इज्जत थी, हम भी इसकी तारीफ़ करते थे, मुझे याद है भाई, हमने मेंबरों से तारीफ़ की, चला गया चंद डॉलरों के लिए, चंद डॉलरों के लिए चला गया वहाँ पे, और भी बहुत सारे चले गए। और ऐसे ऐसे बदबख्त हैं कि अभी चंद रोज पहले, चंद महीने पहले प्रोटोकॉल दिया है मोदी को, उसको सिक्योरिटी दी, ऐसे बदबख्त लोग हो तुम, तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं है कि इस पाक सरजमीन ने तुम्हें क्या कुछ दिया, इज्जत दी, शोहरत दी, माल दिया, सब कुछ दिया, पाकिस्तान ने दिया, इस पाकिस्तान के दुश्मनों को प्रोटोकॉल दे रहे हो तुम वहां बैठ के, चंद रियालों की खातिर, चंद डॉलरों की खातिर। ये है वो आजमाइश के मैदान जहां मालूम होता है इंसान की दिलेरी का, इंसान की बहादुरी का। जब शहपुर जंग बचता है ना, डॉक्टर मुस्तफ़ा चमरान ने कहा था, बातों से पता नहीं चलता बहादुरी का कौन कितनी बातें कर रहा है। जब शहपुर जंग बचता है, जब तबले जंग पे चोट पड़ती है, फिर पता चलता है जब बहादुर बुजदिल से अलग हो जाता है, बुजदिल भाग जाता है, ये आवाज़ सुन के बहादुर मैदान में डटा रह जाता है, पहचान हो जाती है। ये तबले जंग की बड़ी खासियत है, अलग अलग कर देता है नाराबाजों को और जानबाजों को। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, है ना। बड़े बड़े मरहलों में, मैदानों में हमने देखा कि अकेले खड़े रह गए, बाकी सब निकल लिए, दो शैल पड़े, मजमा गया, कहीं कहा अरे भाई क्या हुआ, अभी तो बड़े नारे लगा रहे थे, अभी ऐसे भाग गए जैसे ओहद में रसूल को छोड़ के भाग गए थे सारे, अकेले खड़े भाई मैदान में, क्या हो गया, कहाँ चले गए सर, वो तो शेलिंग शुरू हो गई थी, तो पहले चीख क्यों रहे थे, जब दमनी था शैल खाने का, जब हम कह रहे थे नहीं करो आराम से चलो इंसान के बच्चे बन के, तो नहीं शोर कर रहे हैं, ये तोड़ दो, वो फोड़ दो, ये आग लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, दो शैल पड़े, सारा मैदान साफ, हम खड़े हुए अकेले, भाई क्या हो गया, अब अभी तो शेर बने हुए थे, क्या हो गया। ऐसे नहीं होता है, आपकी बात नहीं कर रहा, जो आँखों से देखा है वो कहता हूँ, मुशाहिदे का आदमी हूँ, इसलिए बगैर खौफ के कहता हूँ, अगर किसी में हिम्मत है तो आओ, कितने मकामात बताऊंगा जहां ये सब कुछ हुआ है, सबको पहचानता हूं, आप ही के दरमियान पैदा हुआ हूं, आप ही के दरमियान पला बढ़ा हूं, जवान हूं, इसलिए बातें करता हूं, खबरदार दावा उतना करो जितना पूरा कर सकते हो, ऐसे दावे ना किया करो कि जिन इम्तिहानों के मैदान में पूरा ना उतर सको। कैसे होते हैं इम्तिहान, चलिए अब कुछ तो बोल दूँ, आज सब 6 सितंबर की नज़र होना भी चाहिए था, उनका हक है, हमारे शहीदों का हक है, 6 सितंबर के लिए जो मैंने बात की है, अपने जवानों के लिए बात की, उनका हक है, लेकिन मजमून पर ना बोलूँ तो फिर हक अदा नहीं होगा ना। अब आइए, कैसी कैसी आजमाइशें हैं, आजमाइश बयान करूँगा जनाब यूशा बिन नून की, और आप कहीं और पहुँच गए तो मैं ज़िम्मेदार थोड़ी हूँ, मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ आपके दिमाग कहीं पहुँच जाए तो। जनाब मूसा के वसी है ना यूशा, भाई पहले बने थे हारून, याद है ना, लेकिन जनाब हारून का इंतकाल हो गया जनाब मूसा के सामने, किसे बनाया था वसी, जनाब यूशा बिन नून को, नाम ले चुका हूँ 2-3 बार, आज बता रहा हूँ तफसील। जब ये वसी बने, अब रकाबत शुरू हो गई, जनाब सफूरा जौजा किसकी, जनाब मूसा की, एक नबी की अहलिया, एक नबी की बेटी, किसकी बेटी, जनाब शुएब, वो जो मदाइन जहां गए थे जनाब मूसा, और कितनी कुर्बानियां दी, घर छोड़ा, सहरा का सफर, हर मुसीबत में साथ, हर मुसीबत में साथ, हर मसाइब में रंजोलन में साथ जनाब सफूरा। लेकिन आजमाइश कैसी आई, آزمائش ایسی آئی کہ جب جناب یوشع جو بظاہر خاندان کے نہیں ہیں وہ بن گئے وسیع تو منافقوں نے جناب صفورہ کو گھیر لیا. ابھی سمجھ جائیں گے, نہیں سمجھے ابھی دو منٹ میں سمجھ جائیں گے. منافقین نے گھیر لیا بڑے بڑے, ان کو چڑھایا کہ یہ کیا بات ہوئی, حق تو یہ تھا آپ کے خاندان سے ہوتا, کوئی آپ کا رشتہ دار ہوتا ہمارے گھر کا ہوتا, یہ یوشع کہاں سے وسیع بن کے آ گئے. اور تھوڑی سی رقابت تھی بھی جناب صفورہ کو کہ ہر وقت یہ اللہ کا رسول موسیٰ یہ ہر وقت یوشع یوشع کیوں کرتے, کیونکہ یوشع کون تھے, سالار جنگ, یوشع کون تھے, سپہ سالار, جس میدان میں جاتے تھے موسیٰ کے لیے فتح کی خبر لے کر آتے تھے. تو جناب موسیٰ کی زبان پہ یوشع کا نام رہتا تھا اپنے بیٹوں کی طرح, جناب موسیٰ جناب یوشع کو سمجھتے تھے. تو تھوڑی سی رقابت بھی تھی نا, بس اس رقابت کے شولوں کو بلکہ رقابت کی چنگاریوں کو شولہ بنایا منافقین نے. اور یہاں تک نوبت آئی کہ جناب صفورہ جناب یوشع بن نون کے مقابلے پر آ گیا, لشکر کشی. اب ظاہر ہے جناب موسیٰ کی اہلیہ ہے, لشکر تو جمع ہو ہی جائے گا بھائی. معاشرے میں مقام جو ایسا ہے اتنا محترم, اب منافقین نے بھی شور کیا, بھائی آ جاؤ سب جمع. پتا ہے نا کون ہے, فلاں کی بیٹی, فلاں کی زوجہ, آج بھی یہ ہو رہا ہے, فلاں کا بیٹا, فلاں کی بیٹی. اب ان میں نہ کوئی بیٹا نظر آتا ہے نہ بیٹی, پتہ نہیں ہے کیا. وہ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر, کچھ بھی ہے, فلاں کی بیٹی تو ہے نا, کچھ بھی ہے, فلاں کا بیٹا تو ہے نا. لہذا ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے عقل کے اندھے کہ جنہیں یہی نہیں معلوم کہ رہبری کا معیار کیا ہوتا ہے, قیادت کا معیار کیا ہوتا ہے. وہ بھی بتا دوں گا آپ کو, آج موقع ملا, آج نہیں ملا تو کل بتا دوں گا کہ رہبری کا معیار قرآن نے بتایا ہے کیا ہوتا ہے رہبری کا معیار, وہ بتا دوں گا. لیکن ابھی اتنا سنیے, صفورہ کے گرد سب جمع ہو گئے سارے, نہیں بھائی رسول کی اہلیہ ہے, رسول کی زوجہ ہے, رسول کی بیٹی ہے, یہ کیسے ناحق ہو سکتی, نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی بھائی, ہر زمانے میں ایسے ہی تھا. لشکر کشی کی, جناب یوشع نے بہت سمجھایا نہیں کریں نہیں کریں نہیں کریں, میں اپنی مرضی سے نہیں بناؤں, جناب موسیٰ نے بنایا. اور جناب موسیٰ نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا, جناب موسیٰ نے اللہ کے حکم سے بنایا. سمجھ میں آ رہا ہے نا جو سمجھانا چاہ رہا ہوں, انشاءاللہ سمجھ رہے ہوں گے آپ کہ جناب موسیٰ نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا, جناب موسیٰ نے اللہ کی مرضی سے بنایا. لشکر کشی کی, ڈیلے کرتے رہے جناب یوشع, ڈیلے کرتے رہے, جنگ نہ ہو جنگ نہ ہو, احترام باقی رہے احترام باقی رہے. آخر کو جنگ ہو گئی, چھ مہینے انتظار کیا, کتنے مہینے, چھ مہینے, یہاں تک کہ لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیے. یوشع ڈر گئے, یوشع جنگ سے گھبرا رہے ہو. یوشع نے کہا بھائی گھبرا وبرا نہیں رہا, میں نہیں چاہتا کسی کا احترام خراب ہو جائے, میں نہیں چاہتا کسی کی عزت خراب ہو جائے نہ. آخر کو ساری حجتیں تمام کی, ہر طرح سے سمجھایا, جنگ ہوئی. اور جب جنگ ہو گئی تھوڑی دیر میں معاملہ ختم ہو گیا, بھاگ گیا لشکر, جو بچے تھے بھاگ گئے, جو جناب صفورہ کے ساتھ آئے تھے سارے بھاگ گئے, گھیرا ڈال دیا, یوں سمجھے کہ محاصرے میں لے لیا. اب کیا کروں بھائی, سب سردار جمع ہو گئے. اس زمانے میں تو ایک ہی سزا تھی, شریعت میں بھی یہی سزا تھی, باغی ہیں قتل کر دیا جائے, باغی ہیں مار دیا جائے. اب یوشع کا جواب سنیے, جناب یوشع اپنے سردار سے کہتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے, مجھے حیا آتی ہے, مجھے شرم آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ رسول کے حرم میں رہی ہے. اب تو سمجھ گئے, کیونکہ رسول کے حرم میں رہی ہے, میں یہ نہیں کر سکتا. رسول کی زوجہ رہی ہے, رسول کے حرم میں رہی ہے, لہذا ہم سے کہا جائیے گھر جا کے بیٹھیے, اب نہ نکلیے گا ورنہ وہ حق استعمال کر لوں گا جو موسیٰ نے مجھے دیا ہے. سمجھ گئے, صفورہ چپ چاپ چلی گئی, ساری زندگی پچھتاتی رہی, روتی رہی کہ میں اللہ کے رسول کے وسیع کے مقابلے میں کیوں آئی تھی. تو جب جس زمانے ایسا ہی ہے نا؟ نہیں جانتے. آزمائش کہاں سے آئے گی نہیں معلوم. اس طرح آزمائش میں ڈالا انبیاء کی اولادوں کو, انبیاء کے ہمسروں کو, یعنی انبیاء کی ازواج, ان کی اہلیہ, اس طرح سے ان کو ڈالا امتحانات میں, پروردگار نے ایسی آزمائش لی وسیع کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ وسیع کے ذریعے سے. یہ وسیع ہی تو معیار ہے کہ جناب عیسیٰ کے بعد شمعون کو مانتے ہو یا نہیں, جناب سلیمان کے بعد آصف برخیہ کو مانتے ہو یا نہیں. جس نے مانا ایمان پر, جس نے نہیں مانا ایمان سے خارج. بس بار بار اسی لیے تو کہتا ہوں کیوں ائمہ طاہرین نے تاکید کی, خبردار غدیر کو نہ بھلانا, سارا اسلام غدیر میں ہے, فراموش نہ کرنا. اسی لیے میدان خبیر خم سجایا گیا کہ آزمائش کے لیے علی کو بلند کیا اللہ کے رسول نے, کیا پتا چلے گا کون توحید و رسالت پر ایمان رکھا ہے, کس کے دل میں بغض و نفاق و عناد, یہ تینوں بیماریاں بیٹھی ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ یہ سب سے بڑی آزمائش تھی مسلمانوں کی غدیر خم, اور آج تک ہے, آج تک یہی آزمائش ہے. اسی لیے رکھا سارا جھگڑا ہوا وسیع پہ کہ خود تو بن گئے, اب اپنے بعد اپنے بھائی کو ہم پر مسلط کرتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ آخری بات سن لیجیے آج کے باب میں. تب گئے تھے نا سب کہ تین دن روکا یہاں پہ, دھوپ میں بٹھا دیا, جانے والوں کو بلاؤ پیچھے والوں کو بلاؤ, سب ہو گیا. اس کے بعد اعلان کر رہے ہیں من کنتو مولا ہو وحاذا علی مولا, پڑھ چکا رہا ہے اس میں سارا. لیکن آگے کی بات تو سن لیں کیا ہوا. اب جو گروہ جمع ہوا ایک, یہ کیا بات, ہر جگہ علی, ہر جگہ علی, جنگوں میں علی. تو بھائی خود کچھ کر کے دکھا دیا ہوتا, خود کچھ کر کے دکھا دیا ہوتا. میں نے بہت ڈھونڈا, بہت چھانا, کہیں مجھے کسی مقتول کا نام ملا نہیں. بڑے بڑے بہادروں, بڑے بہادروں کے ہاتھ سے بڑے بہادر تو تھے بھائی, کوئی مقتول تو لیاؤ بھائی. علی کے تو ہر جنگ میں ہاتھوں سے جو مارے گئے فہرست تھے طویل, ہے نا, سب کے نام ہے, یہ مارا یہ مارا, اس کو مارا اس کو مارا. ایک کے تو پورے خاندان کو اڑا دیا بدر میں, عتبہ ابن ربیعہ کو, شیبہ ابن ربیعہ, عتبہ ابن ربیعہ, ولید ابن عتبہ, سفیان ابن ولید, یہ سارے ایک ہی خاندان. سفیان نام کا ایک وہاں بھی شہید ہوا, یاد رکھیے گا, سفیان ابن عتبہ. آدھا خاندان ختم کر دیا علی نے وہاں پہ بدر میں. تو سب کے نام ہیں نا, جن جن کو علی نے مارا ان کے نام, حنزلہ ابن ابو سفیان, ابو سفیان کا ایک بیٹا تھا حنزلہ, اسے مارا بدر میں. اب کتنے مار دیے, احد میں مارے, پھر اگر آؤ گے خندق میں تو عمر ابن عبدوت کا نام ہے, خیبر میں مرحب و انتر کا نام ملے گا. ہر جگہ ہے نا بھائی جن جن کو علی نے مارا نام ہے. میں ڈھونڈتا رہا, حسرت رہی کہیں تو کوئی نام مل جائے. ہاں کچھ تلواریں ضرور ملیں, استنبول کے توپ کاپی عجائب خانے میں, اور ماشاء اللہ بالکل نئی ملی. سلوات بھیجی محمد علی محمد پر. یہ بھی ایک جنگ کا جوہر ہوتا ہے, بہادروں کی جنگ کا جوہر ہوتا ہے کہ ایسی صفائی سے میدان جنگ میں تلوار چلاؤ, نہ دوسرے کو کوئی زخم آئے نہ اپنے کوئی زخم آئے. خدا کے بندو یہ بھی تو کلام کمال ہے, کتنا بڑا کمال ہے. ہر ایک کے پاس ہے کوئی یہ کمال, ہر ایک کے پاس تھوڑی یہ کمال ہے. ایسے بھی با کمال لوگ گزرے تاریخ میں, گزرے ہوئے کہیں, مجھے کیا پتا, میں تو ویسے بتا رہا ہوں, ایک بات کر رہا ہوں آپ سے. سلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. تو اب وہ گروہ جمع ہوا غدیر میں اعلان کے بعد, اور آپس میں میٹنگ شروع کر دی. یہ کیا ہوا بھائی؟ اب ہوتا ہے نا کوئی ایسا جذباتی جنونی ہوتا ہے کہ اس کو خوب بھر دو, یہاں تک بھر دو کہ خودکشی کرنے پہ تیار ہو جائے. اب سے تھوڑی شروع ہوا ہے, علی کی دشمنی میں یہ خودکشی کا سلسلہ جب سے شروع ہوا, غدیر خم سے خودکش بمبار تیار کرو, برین واشنگ کی گئی. دیکھا کہ یہ آسانی سے ہتھے چڑھ جائے گا, حارث اس کو پکڑ لو, حارث ابن نعمان فہری اس کو پکڑ لو, اس کو خوب. یہ کیا بات ہے, ओ जनाब पागल हो गया, अली की दुश्मनी में पहली पागलता, इसके बाप दादा की गर्दनें उड़ाई थी, टुकड़े टुकड़े किए थे अली ने बद्रोहद में, वैसे ही दिल में नफरतें लिए बैठा था, इसको अली ने खूब भाई है, देखो ये क्या हो रहा है, सब क्या हो गया। कहा कि मैं जाता हूँ, मैं बदतमीज़ तो होते थे ना लोग, और बदतमीज़ी को बड़ा फ़ख्र भी समझते, खुदा ना करे हमारी कौम में ये आदत आ जाए कि बदतमीज़ी भी करो और फ़ख्र भी करो। खबरदार, अपने बच्चों को तमीज़दार बनाओ। बाज़ औक़ात बहुत दिल चलता है, बहुत खून खोलता है कि शियों के बच्चे, सादात के बच्चे इतने बदतमीज़ कि बड़ों छोटे की कोई तमीज़ नहीं है। अरे उलमा को तो छोड़ दीजिए, उनको तो किसी खातिर में नहीं लाते। मोहल्ले के बड़ों का एहतराम, बुज़ुर्गों का एहतराम, अपने घर में बड़ों का एहतराम नहीं। सुबह उठ के हमें आदाब और सलाम की आदत सिखाई गई, आज तक आदत है। यहाँ है बड़ा बड़ा सलाम कर ले तो कर ले, बच्चा कहाँ से सलाम करेगा, बच्चे की तौहीन नहीं हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं कीजिए, तमीज़ सिखाइए बच्चों को, बदतमीज़ ना बनाइए। बहुत दुख होता है, मैंने अर्ज़ किया कि मैं वही बात करता हूँ जो देखता हूँ, मुशाहिदे में जो मेरे आती है, मैं वो बात करूँ। मुशाहिदे का आदमी हूँ, ख्वाबों ख्यालों का आदमी नहीं हूँ मैं भाई। जीता जागती दुनिया को जो देखता हूँ वो वही आपके सामने पेश कर देता हूँ, बस अपने अंदाज में जो मैं देखता हूँ वो आपको सुनाता हूँ। खैर, तैयार कर लिया उसको, हारिस इब्ने नुमान फ़ैरी तैयार हो गया, जा भाई तू जा, तू बड़ा दिलेर है भाई, तेरे बाप दादा भी बड़े दिलेर थे। हाँ मैं जाऊँगा, पूछूंगा रसूल से ये क्यों किया, ऐसे क्या गया, हम पर मुसलत कर दिया अली को, पहुँच गया अंदर बदतमीज़ी के साथ, ये भी तो बड़ी दिलेरी है, जा रहा ज़रा घुस जा मौलवी के पास, ये सवाल कर दे जाके, देखी जाए। वो अपने ख्याल में बड़ा बहादुर समझ रहा है, उसे नहीं मालूम कि उसकी बदतमीज़ी उसके ख़ानदान का पता दे रही है। आपको बता रहा हूँ, होशियार रहा करो, तुम्हारे बच्चे जब घर से बाहर निकलें तुम्हारे मुअर्रिफ हैं, यानी तुम्हारा तारुफ कराने वाले, वो जो भी हरकतें बाहर करेंगे ना, लोग पहले पूछेंगे किसका बच्चा है ना, बस समझ जाएंगे हाँ घर के घर का माहौल ही ऐसा होगा, जब भी तो ऐसा है ना। इसलिए कहता हूँ होशियार रहो, इन बच्चों की वजह से तुम्हारी इज्जत भी है जिल्लत भी है, डर जाएंगे आप, समझे डर गए मेरे बच्चे ने डरा दिया, डर नहीं गए। हर शरीफ आदमी यही करेंगे कि भाई इनसे दूर ही रहो, बदतमीज़ लोग हैं पता नहीं क्या कर देंगे, है ना, इनसे दूर रहो। ऐसा होता है ना, ईमानदारी से बताइए कि शरीफ आदमी दूर रहेगा भाई। हाँ भाई मैं बुज़दिल हूँ, मुझे बुज़दिल समझ, मैं कौन, अब बच्चों के मुँह लगेगा कौन, इसके अब्बा और आ जाएंगे बदतमीज़ी करने, है ना, ऐसे नहीं। खबरदार, आपका दोस्त हूँ इसलिए आपसे ये बातें कर रहा हूँ, नाराज़ होते हैं तो हो जाइए, मगर मेरा फ़र्ज़ है आप तक ये बातें पहुँचाना, तो मैं जो अपने बच्चों के लिए बेहतर समझता हूँ वही आपको दूंगा ना। अच्छा इंसान वही है जो अपने लिए अच्छा समझे, वही दूसरे के लिए भी अच्छा समझे। जब मुझे गवारा नहीं कि मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरे पोते पोतियाँ, मेरे नवासे नवासियाँ बदतमीज़ी से बात करें, मैं दूसरों के बच्चों के लिए कैसे मैं खयानत करूँगा कि अपने बच्चों को तो टोकूँ और दूसरों के बच्चों को ना टोकूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता, अपने बच्चों को भी टोकना है तो दूसरों के बच्चों को भी टोकना। आइए, भेज दिया आरिस को, घुस गया खेमे में अल्लाह के रसूल के, ये जाओ तुम आया है, अभी तक आप हमसे जो कहते रहे हम मानते रहे, बदतमीजी से बात कर रहा है, यही बदतमीजी से बात कर रहा है, हम मानते रहे, अब आपने मुसलत कर दिया अली को हम पर, या आपने अपनी मर्जी से किया, या अल्लाह के हुक्म से, बदतमीजी से बात कर रहा है, सवाल कर रहा है लेकिन बदतमीजी से, वही सवाल करो तमीज से तो करो। अल्लाह के रसूल को कभी गैज़ नहीं आता, बहुत कम मकामात हैं जहाँ पर गैज़ आया, और एक अजीब बात है कि उन मकामात में भी ज़्यादातर उसी वक्त गैज़ आया जब किसी ने अली की तरफ उंगली उठाई है। अपने बारे में कोई कुछ कह ले, रसूल कुछ नहीं कहते, अली के बारे में कोई कह दे, मदीने के ना मालूम कितने वाक़ियात हैं, कभी बताना शुरू करूँ एक घंटा गुजर जाएगा कि कहाँ कहाँ किस किस को अली के बाप में अल्लाह के रसूल ने डांटा है, फटकारा है। यहाँ भी अल्लाह के उसने गैज में कहा खामोश, मैं अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता, यह अल्लाह का हुक्म है जो मैंने पहुंचाया है तुम लोगों तक। अब ये खेमे से गुस्से में ये कहता हुआ निकला कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आसमान से पत्थर आए और मुझे हलाक कर दे, बस अली की दुश्मनी में, अली के बुग्ज में, अरे अल्लाह की नाफरमानी करता ना अल्लाह फौरन अजाब नहीं देता, देता है, सुबह से शाम तक लोग नाफरमानियां करते हैं, कहां अल्लाह अजाब देता है, छोड़ो जाने दो, कहां बच के जाएंगे मेरी हुकूमत से, लायुम के नुल फिरारों में हुकूमत, एक तेरी हुकूमत से कौन भागेगा। इसलिए अल्लाह अजाब देने में कोई जल्दी नहीं करता, लेकिन मांगने वाले ने जब अली की दुश्मनी में अजाब मांगा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है तो आसमान समझ गए थे ना, रसूल लाइन लगा के मुबारकबाद दिलवाते, सब आओ, जब तो 3 दिन लगे, 5 दिन लगे, वरना 5 दिन ठहरने का तुक क्या आएगा, सब सब मुबारकबाद दो अली को। तो जैसे उसका हाशर देगा उनका लाइन में लग जाओ, खैरियत इसी में, मुबारकबाद देने वाली लाइन में सारे आ गए, वो मरवा दिया, उसको मरवा दिया। आज भी ऐसे ही मरवाते हैं, किसी को ख्वाब में आया था खुदकुश बम्बार, और ख्वाब में आके अब उस्ताद के पास, जिसने उस्ताद ने जैकेट पहनाई थी, कहा उस्ताद बारूद कम भरा कर, तूने इतना भरा कि मैं जन्नत से आगे ही निकल गया, जहन्नम में जाके गिर गया, मैं उधर गिर गया। अब बनाने वाले ने जो भी बनाई मुझे तो पता नहीं भाई, मेरे पास तो कभी कभी ऐसी अच्छी आ जाती है, हालांकि बड़ा चिढ़ता हूँ ये सोशल मीडिया व्हाट्सएप से, लेकिन कभी कभी कोई मुझे दिखा देता है तो मैं कहता हूँ भाई भाई बनाने वाले क्या क्या बनाते हैं भाई, कहता अगर बनाया क्या पता हुआ भी हो, ऐसे ही हुआ। एक और का था, उसकी जैकेट ही पूरी नहीं फटी, उसकी जैकेट पूरी नहीं फटी, और वो जख्मी हो गया, जख्मों से चूर अस्पताल में दाखिल हो गया, लेडी रेडिंग हॉस्पिटल पेशावर में दाखिल हो गया। अब जब होश में आया तो बेचारी नर्स खड़ी, अब ये कहता है सर उसको देख के दूसरी गाय, वो परेशान, उसने लगा क्या भाई खैर तो है, क्या हुआ, कौन सी दूसरी, कहा मौलवी साहब ने बोला था 2 हूरे लेने आएंगी, तू 1 क्यों आई है, सलवार भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हाँ अरे भाई मैंने नहीं बनाई, इत्मीनान यकीन करें मेरी बात का, मुझे तो कोई सुना देता है, मैंने इसलिए मैंने सुना दिया आपको कि मैं बता दूँ ये भी होता है, ये जब से चल रहा है, कहाँ गदीर खुम्स कि लोगों को अली के बुग्ज में, अली की दुश्मनी में इतना आगे ले जाओ कि जहन्नम में जाने को वो समझे कि जन्नत में जा रहा है, उनको ये हो जाएगा ये उस्ताद से गलती भी, वरना आना तो मुझे जन्नत में था, गलती उस्ताद की भी, बारूद ज़्यादा भर दिया था उसने, सलवार भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, है ना। तो बस कैसे आती है आजमाइश पता नहीं चलता, हुसैन के आज़ादारो इसी आजमाइश के ज़माने से मैं और आप गुजर रहे हैं, नहीं हिम्मत ना हारो पहली बात, और तुम हारने वाले हो भी नहीं इंशाल्लाह। अली का शिया कभी हिम्मत नहीं हारता, हौसले अपने जवान रखो दूसरी बात, तीसरी बात नज़्म व ज़ब्त डिसिप्लिन। अगर इराक के मोमिनीन कामयाब हुए नज़्म व ज़ब्त की वजह से, हज़ारों लाशें उठाने के बाद भी नज़्म व ज़ब्त को ख़राब नहीं किया, लुबनान के मोमिनीन कामयाब हुए नज़्म व ज़ब्त की वजह से, शाम के यमन के मोमिनीन कामयाब हैं आज भी तो क्यों, नज़्म व ज़ब्त। एक दूसरे के गरेबानों पे हाथ थोड़ी डालते हैं, क्या हुआ क्यों हुआ कैसे, वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या कब तक होगा, मुझे क्या पता कब तक होगा, नहीं कोई अक्ल की बात करो अल्लाह के बंदो, किस ज़माने में गुजर रहे हैं। बैनुल अक़वामी मंजरनामा है जिस पे आप टारगेट हैं पूरी दुनिया का, क्यों टारगेट हैं आप, पहली मजलिस से बता रहा हूँ टारगेट क्यों है आप, ओ खुदा के बंदो इसीलिए तो आप टारगेट हो, पूरी दुनिया में, यहाँ नहीं पूरी दुनिया में तशय्यो टारगेट है, क्यों टारगेट है, इसलिए कि पूरी दुनिया जानती है कि अगर कोई हक पर है, अगर कोई बातिल से टकरा सकता है, अगर कोई बातिल को शिकस्त दे सकता है, जबानी नहीं अमली तौर पर दिखा दिया दुनिया में, तो सबको पता है कि एक ही कौम है जो बातिल से टकराने में, मर जाने में अपनी फतह तलाश करती है, मर जाना उसके लिए शिकस्त नहीं होता। पहले ये सोच लो, बस आखिरी बात, पहले ये सोच लो हक पर हो। इंसान को सबसे पहले अपना मुहासबा करना चाहिए, जब तक यकीन ना हो कुर्बानी के मैदान में आगे नहीं बढ़ सकता। पहले सोच लो ना भाई, मोमिन के घर में पैदा हो गए इसलिए मोमिन हो, सोचो कोई ऐसा तो नहीं कभी अपने घर में, इस घर में कहीं और पैदा होता कोई और होता, लिहाजा मुहासिबा करो हक पर हो, दीन को देखो अपने, अइम्मा ताहिरीन को देखो, किसी के पास हैं ऐसे पेशवा, किसी के पास है ऐसे मासूमिन की जमात, किसी के पास हैं ऐसे कायनात के रोशन दमकते मुनव्वर चेहरे, हैं किसी के पास, हैं किसी के पास रहम और शफ़क़त की ऐसी तस्वीरें ऐसे मुरक्के, हैं किसी के पास दुश्मनों पे मेहरबानियाँ करने वाले, हैं किसी के पास अपने कातिलों को शरबत शीरी का सिला देने वाले, हैं किसी के पास अपने भाई के कातिल को सैराब करने वाले। पहले सब चीज़ें देख लो, जब हक पर हो पता चल जाए, यकीन होना, यकीन यकीन पैदा करो कि हक पर हो, जब ये यकीन पैदा होगा यकीन रखो फिर कि तुम्हें हर मुश्किल अच्छी लगेगी, खराब नहीं लगेगी। तजुर्बा करके देख लेना, जिनका ये यकीन होता है वो मुश्किलों में कभी तुम्हें घबराते नजर नहीं आएंगे, वो साबित कदम नजर आएंगे, वो कोहे सुबात बन जाएंगे, अज़्म के पहाड़ नजर आएंगे, अज़्म के हिमालय नजर आएंगे। कभी नहीं घबराते, कभी उनके आसाब जवाब नहीं देते। कितनी मुश्किलें आ जाएं तो जानते हैं, पैदर पे एक के बाद एक मुश्किल आएगी। मैयार क्या है, हक पर हूं कि नहीं, और किसने मैयार दिया, आइए करबला में। कल मैंने जनाब अली असगर की शहादत पढ़ी थी ना, ऐसा ही है ना, याद है आपको। आइए आज अली अकबर का जिक्र करें। क्यों मैंने कहा अली अकबर का नाम, जोहर के बाद अली अकबर ने देखा कि अब चंद नासिर रह गए, बस सब शहीद हो रहे हैं, एक एक करके जा। अभी तफसील पढ़ता हूँ शहादत की, लेकिन पहले ये जुमला सुन लीजिए आप। देखा बाबा के साथी कम होते जा रहे हैं। आए बाबा की खिदमत में, सामने आके सलाम किया बाबा को, बाबा हम हक पर हैं ना। देखिए अजीब सवाल है अली अकबर का, इसलिए मैंने आपके सामने ये सवाल रखा है ताकि आपको याद रहे। अली अकबर ने एक सबक दिया है कयामत तक के लिए, बाबा हम हक पर हैं ना। हुसैन ने अपने बेटे को देखा, कहाँ बेटा, अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है, हक पर तो है, हक पर ही तो लड़ रहे हैं, हक पर जिंदा है, हक पर मरेंगे। मुस्कुरा के अली अकबर कहता है, बाबा फिर क्या परवा, कितनी ही मुसीबतें आ जाए, जब हम हक पर हैं फिर कोई परवाह नहीं। कयामत तक के लिए अली अकबर ने शियों को पैगाम दिया कि मुसीबतों के जमाने में यह सोचा करो कि हक पर हो या नहीं, जब हक पर हो तो कितनी मुसीबतें आ जाए। और मुसीबतें आएंगी इसलिए कि तुम हक पर हो, बातिल पर होते तो कौन तुमको पूछता, हक पर हो जब ही तो तुम्हारे दुश्मन हैं। कौन है अली अकबर, सुनिए बाप, शहादत से पहले एक जुमला सुन लीजिए अली अकबर के बारे में। जब यशीरों का काफिला कूफे में दाखिल हुआ, आगे आगे नैजों पे शुहदा के सर थे, एक मोड़ पर खवातीन का हुजूम इकट्ठा था, कूफे की औरतें जमा थी, सरों को देख रही थी शुहदा के, एक सर पे सबकी निगाहें जम गई। 18-19 साल का कड़ियल जवान, समझ गए ना अली अकबर का सर, अली अकबर के सर को देखा, निगाहें जम गई, खड़ी मार मार के रोना शुरू किया, सर पीटना शुरू किया, चिल्ला चिल्ला कर कहती थी, काश इससे पहले इसकी माँ मर गई हो, इसकी माँ ने इसका सर इस तरह तन से जुदा होकर नैजे पे सवार होते ना देखा हो। उन्हें क्या मालूम कि ये पीछे पीछे नाकों पे जो बीबियां आ रही हैं, इन्हीं में अली अकबर की माँ उम्मे लैला भी है। ये है अली अकबर, इतना हसीन, कितना हसीन। जब मदीने में घर से निकलते थे, माँ कहती थी, मेरे लाल चेहरे पे नकाब डाल, मुझे डर है कहीं मेरे चांद को किसी की नजर न लग जाए। जब घर से निकलते थे, बुजुर्ग सहाबा जवानों को कहते थे, रसूल की जियारत करना चाहते हो, शौक है? जवान कहते थे, क्यों नहीं। तो हुसैन के इस बेटे को देखा करो, देखो सामने आ रहा अली अकबर, ये शबी है पैगंबर। लकब इतना मशहूर था कि करबला में उमर साथ का भी पूरा लश्कर पहचानता था कि हुसैन का ये बेटा शबी है पैगंबर है, इतना मारूफ था। क्यों अजीजों, जानते हो ना कि करबला के वाक़े का इल्म तो पहले था ना, अब्दुल्ला इब्ने जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी हों, या अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हों, या जनाब उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहा हों, कितने ही कोई 24-25 के करीब सहाबा किराम का जिक्र है उम्मातुल मोमिनीन का, जिन्होंने तवातुर के साथ और मुस्तनद हदीसें हमारी अभी उनके अभी, जिन्होंने वाकई करबला को बयान किया कि होगा और यहाँ तक बयान किया कि रसूल रोते थे जब गिरिया करते थे, यानी वो वाक़या जो हुआ नहीं मगर उस पर रोया गया, उस पर गिरिया किया गया। तो मुझे बताइए, अली होंगे करबला में? नहीं। फातिमा है? नहीं। मैं जाहिरी वजूद की बात कर रहा हूँ, वैसे सब हैं। हसन होंगे? नहीं। रसूल होंगे? नहीं। लेकिन सबकी ख्वाहिश है कि करबला में मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। अली ने चाहा कि मेरा हिस्सा हो, अब्बास को मांग लिया, मेरा लाल अब्बास मेरी नियाबत करेगा, हसन ने चाहा मेरा हिस्सा हो, कासिम को सजा के दे दिया, मेरी याद दिलाता रहेगा कासिम, हसन की यादगार बन गया। फातिमा जहरा ने चाहा मेरा हिस्सा हो तो अपनी बेटी जैनब को सानिये जहरा बना दिया। अब समझ में आ गई बात। बस इसी तरह रसूल भी चाहते हैं कि मेरा हिस्सा हो। अब समझ में आया अकबर कौन? शबीह पैगंबर, ताकि मारने वालों पर कोई हुज्जत बाकी ना रहे, सारी हुज्जतें तमाम हो जाएं कि जो शबीह पैगंबर पर तलवारें बरसा सकते हैं, अगर उनके सामने रसूल भी होता तो ये उस पर भी इसी तरह तलवारें चलाते। ये है अली अकबर, ये है अली अकबर। करबला में आ गया शब आशूर, माएँ अपने बच्चों को तैयार कर रही हैं। सुनो मेरी माँ बहनों, बहुत ज़ख्म उठाए हैं तुमने, दुआ तो यही है कि परवरदिगार तुम्हारे आंगनों को महफूज रखे, तुम्हारे बच्चों को भाइयों को सलामत रखे। लेकिन याद रखना, किसी का बच्चा अली अकबर से ज़्यादा ना हसीन है ना कीमती है। अगर है तो बता दो, बता दो। और ना ही किसी बाप को ऐसी मोहब्बत हो सकती है जो मोहब्बत हुसैन को अली अकबर से है, ना किसी माँ को ऐसी मोहब्बत हो सकती है जो उम्मे लैला को अली अकबर से है। शब आशूर गुजर रही है, अली अकबर को तलब किया माँ ने, अली अकबर आए और जैसे कि बेटों के नाज उठवाने का अंदाज होता है, लेट गए इस्तराहत के। दराज खींची अली अकबर ने, अपना सर माँ के जानों पे रख दिया। है ना, बच्चों का खास अंदाज होता है, जो जानते हैं कि माओ का मकाम क्या है। क्या किया उम्मे लैला ने? एक हाथ से अली अकबर के बालों में कंघी कर रही, अपनी उंगलियों से एक हाथ अली अकबर के रुखसार पे रखा और अपने बच्चे की पेशानी के बोसे ले रही उम्मे लैला और गुफ्तगू करी। मेरे लाल, जानता है मैंने क्यों बुलाया? मादे ग्रामी बताई, हुक्म कीजिए, आपने मुझे इस वक्त क्यों तलब किया? का बेटा देख, तू उम्र के इस हिस्से में है कि हर माँ की ख्वाहिश होती है कि अपने बेटे के लिए चांद सी दुल्हन लेकर आए। लेकिन मेरे लाल, तू देख रहा है ना कि इतना बड़ा लश्कर जमा हुआ है तेरे बाबा को कत्ल करने के लिए। मेरे लाल, अली अकबर सुबह सबसे पहले मैदान में चला जा अपने बाबा के दिफा के लिए, ताकि मैं तेरी दादी जहरा के सामने सुरखुरु हो जाऊँ। बस अब मेरी एक ही ख्वाहिश है, तो हुसैन पर, अपने बाबा पर कुर्बान हो जा। अली अकबर ने अपनी माँ का हाथ थामा दोनों हाथों से और फरमाते, मादरे गिरामी इत्मीनान रखी, भला हो सकता है जिसका बाप का जवान बेटा जिंदा हो कोई मुसीबत उसके करीब आ सकती है? आप इत्मीनान रखें मादरे गिरामी, मैं हालात को देख रहा हूँ, मेरी नज़र है, आप जो चाह रही वही होगा। शबेदारी करते रहे अंसार हुसैनी, मुनाजात, तिलावत, इबादत, नमाज, फजर का वक्त हुआ, नाफे इब्ने हिलाल आगे बढ़े अजान देने के लिए, फौरन हुसैन ने रोका, है नाफे आज आप अजान नहीं देंगे। नाफे ने हाथ जोड़ के अर्ज की, मौला क्या मुझसे कोई खता हुई? हुसैन ने गले से लगा के कहा, नहीं आपसे कोई खता नहीं हुई, लेकिन मेरा जी चाहता है कि यह आखिरी अजान नाना के लहजे में सुन। अली अकबर कहाँ है? बुलाइए अली अकबर को। अली अकबर को बुलाया गया, खेमों में खबर फैल गई कि आज की अजान अली अकबर देंगे। बस इधर अली अकबर गुलदस्ते अजान पे पहुंचे, अली अल्लाहु अकबर कहा, बीबियां खेमों में पछाड़े खाने लगी, समझ गई कि अब ये खूबसूरत चेहरा, ये खूबसूरत आवाज सुनने को न मिलेगी। या आखिरी आवार आवाज अजान है जो अली अकबर दे रहे हैं। बस जंग मगलूबा हुई, नमाज के बाद जंग मगलूबा तमाम हुई, सबसे पहले अली अकबर आगे बढ़े, बाबा मैदान में जाऊं? हुसैन ने इजाज़त दे दी, जाओ। हुसैन ने बता दिया कि सबसे पहले गवाह रहना, मैंने अपने बेटे को इजाज़त दी थी। इधर अली अकबर चंद कदम आगे बढ़े थे कि अंसार हुसैनी ने सफ़े बांध ली, मौला ये कैसे होगा, ये नहीं हो सकता कि हम जिंदा हों, शबीह पैगंबर मैदान में चली जाए, हम क्या जवाब देंगे आपके नाना रसूल को, रसूल खुदा को क्या जवाब देंगे? नहीं जाने दिया अंसार ने, जब तक एक भी नासिर था अली अकबर मैदान में नहीं गया। फिर अली अकबर ने जाने की कोशिश की, औलादे जाफर वकील सामने आ गए, ए मौला, ए सैयद सरदार, ए चचा जार, ए इब्ने अम, ये नहीं हो सकता हम जिंदा हों, अली अकबर मैदान में चला जाए, क्या मुंह दिखाएंगे अपने अजदाद को कि शबीए पैगंबर को खाक और खून में गलता देख कर आ गए। नहीं जाने दिया, इसके बाद कभी हसन के बेटे कभी अली के बेटे, कोई जाने नहीं देता था अली अकबर को। एक वो वक्त आया कि अली अकबर ने कहा बाबा मैदान में जाऊं, मेरा दिल कहता है हुसैन ने कभी दाएं देखा होगा कभी बाएं, शायद कोई आगे बढ़कर कह दे कि अली अकबर मैदान में नहीं जाएगा, मगर कोई न था रोकने वाला। और इंसाफ से काम लो, सबके लाशें हुसैन खुद उठाकर लाया है, भला अपने बेटे को कैसे रोकेगा। बेटा जाओ, मगर माँ का हक है, माँ से इजाज़त लो, आखिरी सलाम करो। अली अकबर आए माँ अदरे गिरानी के खेमे में, उम्मे लैला के खेमे में, है माँ अदरे गिरानी, आपसे किया हुआ वादा पूरा करने जा रहा हूँ, आपकी इजाज़त का खास्तगार हूँ, आखिरी सलाम के लिए आया हूँ। बड़े ही इत्मीनान से जनाब उम्मे लैला ने फरमाया, ए मेरे लाल मैं कौन हूँ इजाज़त देने वाली। अरे जिस थुपी ने पाल कर जवाब दिया उससे इजाज़त ले। अब ये बड़ा मुश्किल मरहला था अली अकबर के लिए, पहुँचे फूफी के खेमे में, सलाम किया, जैनब ने जवाब दिया, मुंह फेर लिया। हैरान होकर अली अकबर ने कहा फूफी अम्मा कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम आपके पास आए हो आपने मुंह फेर लिया हो, क्या हमसे कोई खता हुई। जैनब फरमाती है नहीं मेरे लाल, भला तुझसे कैसी खता हो सकती है, मगर मैं जानती हूँ कि आज तू क्यों आया, आज तू किस इदारे से आया। मेरे लाल तेरी जवानी बचाने के लिए मैंने अपने ओना मोहम्मद को कुर्बान किया, तुझे कैसे मैं मैदान में जाने दूंगी। बस आजादारो, अली अकबर भी जैनब की आगोश का परवरदा है ना, फौरन फौरन अंदाज बदला। अच्छा बस एक मसला बता दीजिए, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैदान में, एक मसला बता दीजिए, आपका मर्तबा बुलंद है या मेरी दादी जहरा का। घबरा के सामने जहरा फरमाती है मेरे लाल ये तुमने कैसा सवाल कर दिया, कहाँ वो सैयद निसाए आलमीन, कहाँ मैं अदना सी करीस, क्या मुकायसा है दोनों का, ये तूने क्या सवाल किया। अब अली अकबर कहते हैं अच्छा फूफी जान बस इतना और बता दीजिए, अगर क़यामत के दिन मेरी दादी जहरा ने आपसे सवाल कर लिया कि जैनब अपने अली अकबर को बचा लिया, मेरा हुसैन से भाग कर दिया गया, फिर क्या जवाब देंगे। बस जैनब को अपने अली अकबर पे प्यार आ गया, आगे बढ़कर पेशानी के बोसे लेना शुरू किए जैनब ने, लाजवाब कर दिया अली अकबर ने सानिया जहरा को, आंखों में अश्क हैं, फरमाती हैं जैनब मेरे लाल अब मैं तुझे नहीं रोकूंगी, अली अकबर अब मैं तुझे नहीं रोकूंगी। दो रुख्सतें हैं करबला में, या अली अकबर की या हुसैन की। जब अली अकबर निकलते थे पर्दा उठता था, फिर गिरता था, फिर उठता था, फिर गिरता था, 70 बार ऐसा हुआ। क्यों हुआ? जब अली अकबर निकलने की कोशिश करते थे बीबियां वापस खींच लेते, कभी माँ खींच लेती थी, एक आखिरी बार और इस रुख अनवर की जियारत करने दे जो कुछ ही देर में खाक और खून में गलता होने वाला है। कभी फूफी खींच लेती थी एक बार और सदका हो जाने दे, और दिल कहता है कभी कोई छोटी सी बच्ची कदमों से लिपट जाती होगी, भैया ना जाओ ना जाओ, जो मैदान में गया वापस नहीं आया। ना मालूम कैसे अली अकबर रुख्सत हुए, हुसैन घोड़े की बाट थामे खड़े हैं, सवार कराया अली अकबर को, जाओ बेटा खुदा हाफिज, हम भी थोड़ी देर बाद तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। अली अकबर रवाना हुए, चंद कदम चले थे, एहसास हुआ पीछे पीछे कोई आ रहा। अब जो अली अकबर ने मुड़कर देखा तो क्या देखा, बूढ़ा बाप दोनों हाथों से कमर था, पीछे पीछे चला रहा, रुक गए अली अकबर, उतर आए घोड़े से, बाबा के हाथ खान कर कहते हैं बाबा आप तो मुझे रुख्सत कर चुके हैं, अगर इस तरह मेरे पीछे पीछे आएंगे मैं कैसे मैदान में जाऊंगा, मैं कैसे जंग करूंगा। बस हुसैन ने बेताब होकर अली अकबर को सीने से लगाया, कलेजे से लगा के खींच लिया, और कहते मेरे लाल तेरा कोई तुझ जैसा बेटा होता और इस तरह तीरों तलवारों के जख्म खाने जा रहा होता तो तू मेरी कैफियत को समझ सकता था। अच्छा लिए अकबर जा जा, जहाँ तक हो सके मुड़ मुड़ कर देखता जा। मैंने दरमियान की बहुत सारी मंजिलें हटाई, आपको एक मंजिल पर लेकर आऊँ। जानते हैं अली अकबर कभी दाएं हमला करते थे, कभी बाएं हमला करते थे। हुसैन की हालत ये थी कि कभी इधर दौड़ते थे, कभी इधर दौड़ते थे। कोशिश क्या है कि मेरा बेटा मेरी नज़रों के सामने रहे, मेरा बेटा मेरी नज़रों के सामने रहे। लेकिन एक वक्त आया जब हुसैन को अली अकबर नजर ना आए, नहीं नजर आए। कभी हुसैन इधर जाते, कभी इधर। शाम की सियाह बदलियों में हुसैन का चांद गहना गया, घिर गया, नजर नहीं आता था हुसैन को। हुसैन ने पुकारना शुरू किया, अली अकबर, अली अकबर किस तरफ है, किस तरफ है, मेरी बात का जवाब दे। अली अकबर के कानों में आवाज आ रही है अपने बाबा की, मगर जवाब कैसे दे, क्या बताए। बाबा तेरे अली अकबर के हाथ से तलवार छूट गई, बाबा तेरे अली अकबर के हाथ से सिपर गिर गई, बर्छी गिर गई, खोद गिर गया। चारों तरफ से अली अकबर पे वार हो रहे थे, जख्मों से चूर अली अकबर घोड़े की गर्दन पे गिर पड़े, अपने हाथ उसकी गर्दन में डाल दिए। बड़ी मुश्किल से अपने वजूद को संभालने की कोशिश कर रहे थे कि सना इब्ने अनस आगे बढ़ा, या हकीम इब्ने तुफैल, इन दोनों में से एक आगे बढ़ा, या हसीन इब्ने नमीर का नाम भी मिलता है, ये मलून आगे बढ़ा। पूरी पर्ची इसने अली अकबर के पहलू में उतार दी। आजादारो, अरे जवान जवान की पसलियां, अब उस मलून ने अपना अपनी पर्ची वापस खींचना चाहिए तो पर्ची का फल टूट कर कलेजे में रह गया। बस इस पर्ची का लगना था, अली अकबर से घोड़े पे रुका ना गया। लेकिन जानते हो क्या कहा अली अकबर ने, जो शहीद गिरता था आवाज देता था या मौला हो अदरकली, मेरे मौला मेरी मदद को आई है। लेकिन अली अकबर देख रहा है सुबह से लाशें उठाते उठाते मेरा बाबा थक गया, मदद को नहीं पुकारा। अली अकबर ने क्या कहा, गिरते गिरते कहा, अस्सलाम या बता हो अलैका मिन्नी अस्सलाम, ऐ बाबा अली अकबर का आखिरी सलाम। हुसैन के कानों से ये आवाज टकराई, हुसैन गश खा के जमीन पे गिर पड़े, फिर खड़े हुए, नहीं चला गया, फिर गिर पड़े, चिल्ला कर कहा, या बुनैया अलग दुनिया बदकल अफा, ऐ मेरे लाल तेरे बाद इस जिंदगानी पर खाक हो, खाक हो इस दुनिया पर। जब हुसैन से चला ना गया, अपने आप को कोहनियों जानवों के बल जलती रेत पर घसीटना शुरू किया। बड़ी मुश्किल से अली अकबर के सरहाने पहुंचे, कुछ रमक जहाँ बाकी है, सर उठा के जानू पे रखा, रुखसारों पे रुखसार रख दिए। मेरे लाल आंखें खोल, आंखें खोल, देख हुसैन आया है, देख बाबा आया है। अली अकबर ने आंखें खोली, सलाम किया बाबा को, हुसैन ने जवाब दिया, पूछा मेरे लाल किस हालत में है। अली अकबर कहते हैं, बाबा नैजे की अली टूट के कलेजे में रह गई है, बहुत अजियत में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। अच्छा मेरे लाल, ये इम्तिहान भी देगा, लेगा हुसैन ये इम्तिहान भी देगा। अली अकबर को जल्दी रेत पर लिटा दिया, दोनों घुटने जमीन पर, एक हाथ अली अकबर के सीने पर, दूसरा कलेजे में बर्छी का फल खींचने के लिए। अब खुद चश्मे तसव्वुर से देख लो कि कौन कौन सी हस्तियां आ गई होंगी इस मौके पे। मेरा दिल कहता है एक हस्ती को देखकर जरूर हुसैन ने कहा होगा, बाबा अब बताओ खैबर का दर उखाड़ना मुश्किल है या अली अकबर के कलेजे से बर्छी का फल खींचना। अल्लाहु अकबर कहा, बर्छी का फल खींचा, नैजा बर्छी का फल खींचा, कलेजा साफ आ गया, कलेजा निकला, अली अकबर